मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 7 मई 2018 है और आज के इस FEIES.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से फ्रेंड्स हम लोगों ने कविता और शायरी की बातें नहीं की हैं। 2 सप्ताह के दौर में शायद हम लोगों ने बातें नहीं की, जबकि उसका टर्न था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस सप्ताह की शुरुआत मुझे एक कविता से करनी चाहिए, ताकि आप एक प्रकार से यूं कहूं कि एकदम से रिचार्ज हो जाएं। और कविता वैसे भी मन को कहीं न कहीं मोहती ही है, गद्य की तुलना में पद्य का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ कविताएं तो ऐसी भी होती हैं जो हमारे गले में हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली स्थान हासिल कर लेती हैं। उनका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है, इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है। तो मित्रों, तो सबसे पहले मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं जो माधव मधुकर जी की है। माधव मधुकर, कविता क्या है, आप यूं कह लीजिए कि वो बेसिकली शेर व शायरी के अंदाज में ही लिखी गई एक पोएट्री है। तो आइए पहले इसको सुन लेते हैं। कविता बहुत ही सीधी सादी कविता है, बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। इसकी फिर व्याख्या जो भी वक्त मुझे मिलेगा मैं अपने ढंग से करने की कोशिश करूंगा, और आप सब भी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या कीजिएगा। देखिए, कविता है कहां जो लोग मिट जाते थे जो उपकार में, है कहां वो लोग जो मिट जाते थे उपकार में, बात में तो हैं मगर मिलते नहीं व्यवहार में, है कहां वो लोग मिट जाते थे जो उपकार में, बात में तो हैं मगर मिलते नहीं व्यवहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे आने वाली जो 6 पंक्तियां हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सच पूछे तो मेरा उद्देश्य इन 6 पंक्तियों को ही आपके सामने मुख्यतः लाना है। जिंदगी का दर्द होना चाहिए फनकार में, जिंदगी का दर्द होना चाहिए फनकार में, शायरी सच्ची नहीं होती कभी दरबार में, जिंदगी का दर्द होना चाहिए फनकार में, शायरी सच्ची नहीं होती कभी दरबार में, क्या करोगे तुम फरिश्ता बन के इंसा ही रहो, क्या करोगे तुम फरिश्ता बन के इंसा ही रहो, कोई कमजोरी भी होनी चाहिए किरदार में। कितनी खूबसूरत लाइन है, तो क्या करोगे तुम फरिश्ता बन के इंसा ही रहो, यही बहुत बड़ी बात होगी कि आप इंसान बन करके रह सके, क्योंकि कोई कमजोरी भी होनी चाहिए किरदार में। किरदार का मतलब होता है पात्र, चरित्र, करेक्टर। हौसला यदि है तो पहुंचोगे किनारे पर जरूर, वरना कश्ती डूब के रह जाएगी मझधार में, हौसला यदि है तो पहुंचोगे किनारे पर जरूर, वरना कश्ती डूब के रह जाएगी मझधार में। अब मैं ये 8 पंक्तियां तो एक साथ आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि उसका फिर इम्पैक्ट और स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। है कहां वो लोग मिट जाते थे जो उपकार में, बात में तो हैं मगर मिलते नहीं व्यवहार में, जिंदगी का दर्द होना चाहिए फनकार में, शायरी सच्ची नहीं होती कभी दरबार में, क्या करोगे तुम फरिश्ता बन के इंसा ही रहो, कोई कमजोरी भी होनी चाहिए किरदार में, हौसला यदि है तो पहुंचोगे किनारे पर जरूर, वरना कश्ती डूब के रह जाएगी मझधार में। मित्रों, ये एक कविता 8 पंक्तियां शायरी की ही है, शायरी के अंदाज में, मतलब हिंदी का आपको टेस्ट मिलेगा, हिंदी का स्वरूप मिलेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो शेर व शायरी का स्ट्रक्चर है। इस पर आप सब अपने अपने ढंग से विचार करें। मैं अपनी कुछ बातें जो भी वक्त मेरे पास है वो आपके सामने मित्रों रखने जा रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है हमारी जिंदगी की, जो हम मेहनत करते हैं, जो हम कुछ पाना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है? मुझे लगता है मित्रों, करते तो हम सब कुछ है। देखिए, इच्छा तो सबके अंदर ही होती है, सब बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, देश समाज अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सब कहते भी हैं। उसमें से कुछ लोग करने में लग भी जाते हैं, कुछ लोग लगते हैं, सब नहीं लगते। कहने को सब कहते हैं, करने को उसमें से कुछ लोग करने लगते हैं, लेकिन जो करने लगते हैं उसमें से कुछ लोग ही हैं जो इनफैक्ट कर पाते हैं। कर पाते हैं का मतलब है वो सफल हो पाते हैं। अब आप देखिए कि वैसे सामान्य तौर पर हमारे यहां यही कहा जाता है कि आप मेहनत कीजिए सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। ये बचपन से हम सबको एक प्रकार से घुट्टी में पिलाया जाता है, मेहनत मेहनत मेहनत। लेकिन मैं यहां थोड़ा सा इससे पूरी तरह इत्तफाक नहीं रख पाता हूं। इत्तफाक इस मायने में मित्रों की मेहनत की बात तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत को डिफाइन कैसे करते हैं। वो मेहनत क्या है, उसे आप परिभाषित कैसे करेंगे, किसे आप मेहनत करना करें कहेंगे? क्या मैं अपने काम में रात दिन लगा हुआ हूं वही मेहनत है? न रात को सो रहा हूं, न दिन को ठीक से खाना खा रहा हूं, मित्रों से मिलना बंद कर दिया है, कहीं आना जाना बंद कर दिया है, केवल अपने काम में लगा हुआ हूं। लोग देख देख करके मुझ पर तरस खाते हैं कि देखो वो कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं पहुंच कर ही नहीं रहा हूं, मेरा काम नहीं बन रहा है। क्यों? यहीं पर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहूंगा, और वो ये कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन वो ईमानदार मेहनत नहीं है। जिस तरीके से मेहनत होनी चाहिए, एक ऑनेस्ट एफर्ट जिसको कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, युवाओं से बात करता हूं, या बड़े लोगों से भी जो अपनी जिंदगी में ज्यादातर असफलता की शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन अपने को डिफेंड करने के लिए अपने प्रोटेक्शन में वो एक तर्क भी देते हैं कि मैंने इतनी सारी मेहनत की। मेहनत की मित्रों, लेकिन मानसिक स्तर पर कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, क्योंकि जो ईमानदारी है वो मानसिक स्तर पर ही काम करती है। बाहरी स्तर पर तो आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, कितने घंटे काम करना चाहिए उतने घंटे आप काम कर रहे हैं, जो किताबें पढ़नी चाहिए, जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिन माध्यमों के माध्यम से उस काम को अंजाम दिया जाना चाहिए, वो सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चेतना के स्तर पर जो सोच होनी चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए, जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो कितना है? क्योंकि जो हमारी ऊर्जा जो पैदा होगी, याद रखिए, वो चेतना के स्तर पर ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जो पंक्तियां अभी कह रहा हूं इसका अब इस पोएट्री से क्या संबंध है, शेरो शायरी से जिसको मैंने सुनाया है उसका क्या लेना देना? आपको लग रहा होगा कि मैं तो हट करके कुछ दूसरी बात कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। इस लाइन को सुनिए, जिंदगी का दर्द होना चाहिए फनकार में। फनकार का मतलब है कलाकार, आर्टिस्ट, आज की भाषा में कह लीजिए एक्टर, राइट? वो बहुत अच्छा एक्टर है, सारी चीजें, हाव भाव, बोलने का अंदाज, वो सब कुछ बहुत बेहतर है, परफेक्ट है। उसको उसके एक्टिंग स्कूल ने गोल्ड मेडल दिया हुआ है, लेकिन लेकिन कहां है, क्या है, कुछ कमी है? वो उस हाइट पर, उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी का दर्द नहीं है। यहां दर्द का मतलब अनुभव से लगाइए, ये नहीं कि कोई दुख ही अंदर होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है कि दुख ही हो, तजुर्बा, जिंदगी का अनुभव आपका क्या है, आप जो रोल कर रहे हैं उस रोल को आप कितनी गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी मौका मिले, और जल्दी ही बल्कि कर लेना चाहिए, तो आप चार्ली चैपलिन की जीवनी पढ़िए। अद्भुत जीवनी है चार्ली चैपलिन, जो दुनिया के महानतम फिल्मकार हुए हैं, एक्टिंग की दृष्टि से भी, डायरेक्टर की दृष्टि से भी, और फिल्म निर्माता की दृष्टि से भी। मतलब मुझे लगता है कि वो फिल्मों के फिलॉसफर रहे हैं, फिल्मों के माध्यम से उन्होंने फिलॉसफी दी और फिल्मों को भी फिलॉसफी दी, इसलिए मैंने कहा कि वो फिल्मों के फिलॉसफर रहे हैं। उनकी कलाकारी का जो सबसे बड़ा जो रहस्य है, जो गहराई है, जो मिलती है उन्हें, वो केवल उनके दर्द से मिलती है, उनके अपने अनुभव से मिलती है। अगर कलाकार अपने अनुभव को, अपने एक्टिंग को दूसरे दर्शकों तक नहीं उतार पाया, तो फिर इनफैक्ट वो कलाकार नहीं है। कलाकार का उद्देश्य तालियां बजवाना नहीं है, कलाकार का उद्देश्य है सामने वाले के दिल की गहराइयों में उतर जाना। और इसके बाद नीचे देखिए वो क्या कहते हैं, इसी के नीचे की दूसरी लाइन देखिए, ये भी इसी से जुड़ी हुई है। क्या करोगे तुम फरिश्ता बन के इंसान ही रहो, कोई कमजोरी भी होनी चाहिए किरदार में। किरदार में कमजोरी होनी चाहिए का क्या मतलब है? अगर आप बिना गलती के रह जाते हैं, याद रखिए, तब तो आप ईश्वर बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि उनसे कभी गलती नहीं होती है। लेकिन इंसान ही बन करके रहो, तो यहां वो यथार्थ की बात कर रहे हैं। यहां वो गलती को उस रूप में मत लीजिए कि गलती कोई भी नहीं होनी चाहिए या कुछ ना कुछ गलती तो होनी चाहिए। यथार्थ बन करके रहो, रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहो, खुद को भी और रियलिज्म में देखो, जो चीज जिंदगी में हो सकती हैं उन्हें ही करो, यानी कि जिंदगी के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने सारे आसपास के वातावरण के प्रति, अपने संबंधों के प्रति एक तार्किक दृष्टि रखो। आपका जो नजरिया होना चाहिए वो यथार्थवादी होना चाहिए, घोर आदर्शवादी नहीं। आदर्श ठीक है, कुछ सीमा तक आदर्श होने भी चाहिए, लेकिन आदर्श और जो सिद्धांत होते हैं उनको फिर समझने की जरूरत है। आइडियलिज्म का मतलब ये हो जाता है कि ये चीज सुपर, बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री में है, वो आदर्श हो जाते हैं। प्रिंसिपल होते हैं कि मैं जिस काम को कर रहा हूं उस काम को करने के मेरे अपने कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मापदंड हैं, जिसमें नैतिकता भी है, जिसमें कानून भी है, जिसमें आदर्श भी है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप रियलिज्म को लेकर के चलिए, यथार्थता को लेकर के चलिए। मित्रों, इस शायरी की मैंने इस रूप में व्याख्या की है और मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।